نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنی بڑی شخصیات کے بارے میں آج پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان بڑے لوگوں کا ہمیں بھی آخرت میں ساتھ عطا فرما دے. دیکھتے ہیں آج کی آیات، بہت خوبصورت، 132 سے 141 تک. الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں خلیل اللہ کے بارے میں. خلیل اللہ کی بات چل رہی ہے نا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ کلوزیسٹ فرینڈ کو. کلوزیسٹ فرینڈ، ٹھیک ہے. اور کلوزیسٹ فرینڈ کے بارے میں کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو کلوز نہیں کیا. اور یہ کلوزیسٹ فرینڈ خلیل جو ہیں، یہ خود نہیں بن گئے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ہم ان کو صرف کہتے ہیں، یا ہم نے ایک ان کا نام رکھ دیا، ایک ان کا لقب پڑ گیا، یا انہوں نے خود اپنا رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے. کتنا بڑا آنر ہے، تو یہ عام سی بات نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ایک تو پہلی دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات جب سے قرآن پاک شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی بڑی آزمائشوں، ابتلا، بلا کو کہا گیا، جو آزمائشیں دی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کو امام بنا رہا ہوں، لیڈر بنا رہا ہوں، رول ماڈل بنا رہا ہوں، تمہیں چوز کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. نہیں جعلک للناس اماما، ایسے ہی نہیں کہہ دیا. تو آزمائشوں میں پورا اترنا یہ انسان کے درجے بلند کرتا ہے، یہ انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بندے کو چنتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آزمائشوں کے وقت میں ہمیں ثابت قدمی رکھنی ہے، آزمائشوں کے وقت میں ہمیں پورا اترنا ہے ان کے اوپر، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے بن کے دکھانا ہے، ان سے گزر جانا ہے. کہ وہ امتحان بھی ہمیشہ نہیں رہتے، امتحان اوور ہو جاتا ہے، اوور ہو جاتا ہے، لیکن انسان بے صبری کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کب چنا اور کیوں چنا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھیں فوراً، جیسے ایک ہر ایک انسان کی ایک خواہش ہوتی نا، قالا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، اس کو بھی تو امام بنا لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم اگر تمہاری اولاد ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب تم میرا خلیل ہو تو تمہاری اولاد بھی پار ہوگی، وہ بھی امام بنیں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ نہیں، جو ظالم ہوں گے، فرمایا نہیں، جو صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے اللہ نے ان کو نہیں چنا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور آج بھی ہمیں سبق میں پتہ چلے گا کہ دین کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا کہ میرا باپ کون ہے تو بس اس کی وجہ سے میں بھی کچھ بن گیا، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ریلیجس امامت کی بات ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ باپ بادشاہ تو بیٹا بھی بادشاہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دعا کی، رزق کی، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا تھا نا کہ ظالموں کے لیے نا میرے سے بات کرو، ان کو نہیں میں نے دینا یہ مقام، تو پھر اب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جو رزق بھی ہے نا ان کو ہی دینا جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، آیت نمبر 126 میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں رزق تو میں ظالموں کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا، کافر ظالم ہوتا ہے نا. رزق کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں رزق میں نے نہیں دینا ان کو، ٹھیک ہے. بہت بڑی بات یہاں سے پتہ چل گئی ہمیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امامت کی بات، तो फरमाया जालिमों को नहीं मिलेगी, लेकिन रिस्क जालिमों को भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि रिस्क अल्लाह सबको देता है, चाहे वो मोमिन है, चाहे काफिर है, चाहे कोई भी है। दुनिया की नेमतें अल्लाह सबको नवाज रहा है, लेकिन जब दीन के लिए चुनने का मामला आता है ना, तो फिर वो वाला रूल नहीं चलता यहाँ पे जो रिस्क का था। रिस्क के लिए अलग रूल है, फरमा बरदार है कोई या नाफरमान है, मोमिन है, काफिर है, किसी भी अकीदे का है, मुशरिक है, एथीस्ट है, कुछ भी है, अल्लाह सबको खिलाता है, पिलाता है, नेमतें देता है। लेकिन जब आता है मामला चुनने का, कि अपने दीन के लिए चुन ले अल्लाह किसी को, अपना महबूब बना ले, अपना प्यारा बना ले, तो वो उसी को बनाता है जो मुत्तकी होता है। तो इसका मतलब कभी हम ये ना सोचें कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरी गाड़ी खूबसूरत है, मेरा घर बड़ा है, मुझे तरक्कियां मिल रही हैं, तो बस अल्लाह ने ये मुझे सारा कुछ दिया तो हुआ है, तो इसका मतलब अल्लाह मेरे से खुशी है तो दे रहा है ना, तो सब ठीक चल रहा है, सभी ठीक है। अल्लाह जब दुनिया में सब ठीक चल रहा है ये मेरा मामला, तो अल्लाह के यहाँ भी सब अच्छा चल रहा है, वहां पे भी मेरा खाता सही चल रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि अल्लाह खुश ही है तो मेरा यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह हू अकबर, ऐसा ही है ना। तो हमें क्या पता कि जिस वक्त हमें नेमतें मिल रही हैं उस वक्त अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, क्या पता उस वक्त अल्लाह हमसे नाराज हो। फिरौन को तो बड़ी नेमतें मिली, अल्लाह क्या उससे खुश था। सरदारियां मिली कुरैश मक्का को, क्या उन काफिरों से अल्लाह खुश था। तो हमारे अक्सर दिल में ख्याल तब आता है जिस वक्त हमारी कोई मुसीबत आती है, और जब दिन अच्छे होते हैं तो सोचते हैं अल्लाह बस खुश ही है, इतने नेचुरली एक आती है बात। तो ये भी चीज को जहन से निकाल दे, कोई पता नहीं है, हो सकता है मुसीबत आई भी है तो तब अल्लाह राजी है आपसे, हो सकता है जब खुशियां हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला राजी नहीं है आपसे। ये सब इंसान के अपने अमल पे डिपेंड करता है। नेमतों को देख के कभी धोखा ना खाइएगा, ठीक है, अपने आप को बहलाते ना रहें कि मुझे सब कुछ अच्छा तो चल रहा है तो बस सब ठीक ही है, इसका मतलब मेरी नमाजें भी यकीनन ठीक होंगी, मेरा सब कुछ सही ही होगा जो सब ठीक चल रहा है, कोई मुसीबत नहीं आई, वरना जरूर कोई मुसीबत आ जाती, कोई तकलीफ। देखो दुनिया में लोगों पर कितनी मुसीबतें आई, मेरे पर तो कोई नहीं आई, इसका मतलब है कि बस ठीक चल रहा है, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, कोई मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये जहन से निकाल दे, ठीक है। और फिर देखिए इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, अल्लाह अकबर, कितनी डेप्थ है इस दुआ के अंदर, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, कितनी डेप्थ है ना। तो कितना बड़ा सबक है हमारे लिए भी, और हम इस बात को याद कर लें, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, जब भी कोई अच्छा काम करें तो जरूर कहें रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ठीक है। और अक्सर लोग आपको कहते हैं, जैसे मुझे कई दफा लोग कहते हैं, अगर मैं कहूंगी कि अल्लाह मेरे से ये काम कबूल कर ले, बस कहते हैं क्यों नहीं कबूल होगा, आपका तो कबूल ही होना। नहीं, किसी को नहीं पता, हम कैसे कह सकते हैं, इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हैं कौन, पैगंबर हैं दोनों, दोनों बाप बेटा नबी हैं, और काम क्या हो रहा है, आम कोई मस्जिद नहीं बना रहे, काबातुल्ला बना रहे हैं, और अपने हाथों से बना रहे हैं, उठा उठा के पत्थर ढो रहे हैं, मट्टी गारा उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कोई छोटी बात है ये, जमीन पे जो सबसे मुकद्दस जगह है वो बना रहे हैं। हम तो एक मस्जिद में चंदा दे के ही समझते हैं, ला जी हमने तो कितना बड़ा काम कर दिया, अब ला ये कबूल नहीं होगा, हमने मस्जिद बनवाई है, सिर्फ पैसे दे के, डोनेशन दे के हम क्या समझते हैं, और वो अपने हाथों से तामीर कर रहे हैं, और इतनी बड़ी नेकी का काम करते हुए भी डर रहे हैं कि अल्लाह कबूल कर लेना। तो हम भी हमेशा, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना आप कर रहे हैं और आपको लगे ये तो कबूल होना ही होना है, ये शैतान अंदर डालता है ना, ये इसमें क्या, इस ये कैसे नहीं कबूल होगा, क्या उनकी, अल्लाह माफ करे नाउजु बिल्ला, उनकी नियतों में क्या कभी कोई खोट हो सकता है, इतने बड़े पैगंबरों की फिर भी वो दुआएं कर रहे हैं। वो हमारे जैसों का तो हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते हमारी नियतें क्या होती हैं जब हम कोई काम करते हैं। तो याद रखें, काम करना बड़ी बात नहीं है, उसका कबूल हो जाना बड़ी बात है। वरना नेकियां तो मुनाफिकीन भी करते थे, नेक काम तो काफिर भी कर लेते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी कई नेकियां कर रहे होते हैं। देखते नहीं कितने चैरिटी वर्क करते हैं, कितने लोगों के काम आ रहे होते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो असल बात ये नहीं है कि हमने नेकी कर ली, असल बात ये अल्लाह कबूल कर ले। तो कभी अपनी किसी नेकी के काम से धोखा ना खाए, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पे रियाकारी हो गई हो, कहाँ पे तकब्बुर आ गया हो, कहाँ पे क्या चीज हो गई। कुछ भी हो सकता है जिसे नेकी ज्यादा होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है जिस वक्त की थी तब तो ठीक थी, उसके बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अमल जाया हो गया, आमालनामे से ही मिट गया। तो कौन गारंटी दे सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया मुत्तकी तो वो है कि जब कोई नेकी का काम करते हैं तो वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांपते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो नेकी करते हैं और कांपते हैं क्या इसलिए कि वो पुरुने से वो बड़े गुनाहगार थे इसलिए वो डर रहे हैं। जैसे हम भी सोचते हैं ना कि पता नहीं कितने ये गुनाहगार हैं इसलिए पता नहीं बेचारे डर रहे हैं कि कांप रहे हैं कि अब पता नहीं हमारी नेकी कबूल होगी या नहीं। आपने फरमाया नहीं है सिद्दीक की बेटी, नहीं, ये वो हैं जो नेकी करते हैं और मुत्तकी हैं और फिर भी डरते हैं कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम। अल्लाह हू अकबर। तो छोटी सी भी नेकी कबूल हो गई ना तो वो भी बख्शिश करा सकती है, और बड़ी नेकी भी अगर कबूल ना हुई तो वो भी बेकार ही है, उसे कोई फायदा नहीं। तो नेकी की बड़ाई या कितनी ह्यूज है या कितनी छोटी है इससे नहीं, इसको नहीं देखा करें, ये देखें कि इखलास कितना है इसके अंदर, और इसकी परेशानी रखें, इसकी फिक्र रखें कि अल्लाह कबूल कर लेना, अपनी नेकियों से धोखा ना खाया करें, ठीक है। जब तक जाके वहां ना देख लें कि भाई थी भी कि नहीं थी, अब अपना खोलेंगे अमालनामा तभी पता चलेगा ना, तो उससे पहले हम में से कोई बेफिक्र नहीं हो सकता, चाहे वो कोई कितने ही बड़े काम कर रहा। तो अब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे उन्होंने सुभान अल्लाह अपनी औलाद के लिए भी दुआएं की। अल्लाह अमिन जुर्रियतिना उम्मत मुस्लिमत, अल्लाह कितनी औलाद की फिक्र है। और आज भी यही बात होगी, खुद भी वो फरमा बरदार थे और औलाद की भी फिक्र करने वाले थे, खुद अपने लिए भी मांग रहे वजालना मुस्लिम ही नहीं लग, ऐसे नहीं कि अपना हम तो खुद नेक ही हैं। कुछ लोग आगे कहते हैं अब हम बस औलाद के लिए कर रहे हैं, अपनी यानी कुछ अपनी नहीं है कुछ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को बचाओ आग से। खुद माँ को फिक्र नहीं है कि मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूं, यानी जिनको खुद फिक्र है उनकी नहीं बात करूं। खुद जिनको फिक्र नहीं है ना, खुद कोई कुरान पाक पढ़ना, ना खुद नमाजों की पाबंदी करना, ना खुद कोई और अल्लाह ताला की अहकामात को समझना सुनना, और फिर लेकिन औलाद को चाहना कि ये बहुत नेक हो जाए, कैसे हो सकता है। हम औलाद के लिए अगर आप ये ख्वाहिश करें तो पहले अपना तो देखिए, अपने आप को भी फरमाबरदारी पे लेकर आए। आप अगर 100% करेंगे ना तो आपकी औलाद 50% करेगी, याद रखें। औलाद पीछे चलती वालदेन के लिए, उनसे एक एक स्टेप बैक होती है, और आप ही खुद 50% है तो औलाद किधर रहेगी। तो वो पहले कह रहे हैं वजालना मुस्लिम ही नहीं लग, अल्लाह हमें फरमा बरदार बना दे अपने लिए। तो पहले क्या फरमा बरदार नहीं थे, पहले क्या नहीं थे फरमा बरदार जो अपने लिए दुआ मांग रहे। नहीं, फरमा बरदारी में भी और आगे बढ़ा दे अल्लाह। हम तो कहते हैं ना तो मुसलमान हैं ही हम, और क्या करें। वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रही हैं बहनों कि वो कह रहे हैं अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, फरमा बरदार बना दे, और हम कहते हैं तो और क्या हमने करना, कर तो रहे हैं। तो फरमा बरदारी में बढ़ा दे, नंबर टू क्या मतलब है, फरमा बरदारी में दवाम कंटिन्यूटी, क्योंकि आज फरमा बरदार है कल को किसने देखा, कल को क्या पता है कि ट्रैक से हट जाए, पटड़ी से उतर जाए। तो अल्लाह फरमा बरदार रखना ये मतलब है, समझ आई। तो आज की आयत देखते हैं, आयत 132 से 141 तक। वसा और वसीयत की भी है साथ इसके, इब्राहिम अलैह सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैह सलाम ने किस चीज की वसीयत की, यानी वसीयत क्या होती है, ताकीद, और खास तौर पे मौत के वक्त जो की जाती है उसको वसीयत कहते हैं ना हम, क्योंकि बहुत ताकीदी हुक्म होता है ना, जैसे हम कहते हैं मेरी अम्मी की वसीयत थी ये, वो कह के ये मरी थी, तो उसको बहुत बड़ी एक चीज को समझा जाता है ना, तो उन्होंने वसीयत की इब्राहिम अलैह सलाम ने भी अपने बेटों को और याकूब अलैह सलाम ने भी, या बनी या ए मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चूज कर लिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन खुद चूज किया है, और वो दीन क्या है, अब कि कैसे पता चलेगा वो कौन सा दीन है, सभी कहते हैं ये यहूदी कहते हैं हमारा दीन अल्लाह ने चूज किया, ईसाई कहेंगे ईसाई हो जाओ तो फिर तुम ठीक ट्रैक पे हो, फिर तुम सही हो, पहले पढ़ चुके ना हम, आगे भी आज पढ़ेंगे, तो वो तो कहते हैं कि हमारा ही दीन है जो चोजन रिलीजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दीन है जो अल्लाह ने चूज किया है, ये हम कैसे कह सकते हैं। याद रखिए कुरान पाक में एक जगह कोई बात आती है ना तो उसकी वजाहत कहीं और होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान में इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बस अब दीन इस्लाम ही है, और वाजे कर दिया सूरह आले इमरान में वह मई यब तगी गैर अल इस्लामी दीन फलई युकबला मिन हुआ हुआ फिल आखिरत मिन अल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के सामने लेकर आया उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, यानी अब इस्लाम आ गया है ना, ये कुरान उतर आया, अब इसके बाद कोई और दीन, अपने अपने वक्तों में वो ठीक थे, जो ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे वो ठीक थे, जो मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे वो ठीक थे अपने अपने वक्तों में जिन्होंने उनकी इत्तेबा की, लेकिन अब जब इस्लाम एज अ रिलीजन आ गया अब नहीं कोई कह सकता ये सारे दीन ठीक है, कुछ लोग माशाल्लाह इतने वो नाइस बनते हैं इस तरह से कह के वो सोते हैं, ये तो हम बहुत सबके साथ हम कितने घुल मिल के चलने वाले हैं, देखो हम कितने टॉलरेंट हैं, ये बात टॉलरेंस की नहीं है, देखिए जब कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए चूज कर लिया दीन, यानी तमाम अदियान में से किसको पसंद कर लिया, इस्लाम को, अल्लाह के नजदीक इन दीना इंद अल्लाह इस्लाम, और इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है, तो इसमें ना तो कोई टॉलरेंस की बात है ना वो, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बस बात ये है कि अब पिछले अध्ययन एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर्ड चीज को आप खाना पसंद नहीं करते, आप रखना पसंद नहीं करते, नहीं जी ये तो एक्सपायर हो गया, फौरन गार्बेज में फेंकते, और दीन एक्सपायर्ड लेके बैठे हैं, वो अपने जमाने में रेलिवेंट थे आज नहीं है, अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को चुन लिया, और या अब इस वक्त क्या है, वो तो ये इब्राहिम अलैह सलाम और याकूब अलैह सलाम ये वसीयत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन से दीन का कह रहे हैं, वो दीन का कह रहे हैं जो दीन हक है, और वो हमेशा से इस्लाम रहा है, अब उन्होंने अपने दीन को किसी ने यहूदियत नाम दे दिया, किसी ने ईसाइयत नाम दे दिया, लेकिन आपको पता है आदम अलैह सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का दीन इस्लाम ही था, यानी तौहीद, इस्लाम तौहीद का दर्स देता है ना, तौहीद सबका रिलीजन था, अब उसको इस्लाम कह सकते हैं आप, तो वो सब इस्लाम पर थे, एक ही उनकी दीन था, बेस एक थी, हाँ शरीयतें डिफरेंट डिफरेंट थी, यानी उनके मजन किसी का रोजा सुबह से शाम तक है तो किसी का रोजा 24 आवर का है, तो किसी की नमाज किसी तरह से है, किसी की नमाज दूसरी तरह से है, इस तरह से हो सकते हैं कुछ निकाह और तलाक के अहकामात में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बेस तो सेम है ना, तो उन्होंने भी अपनी औलाद को देखें क्या वसीयत की, इससे यहां पता चलता है कि अपनी औलाद को बताते रहना चाहिए कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये तरीका पसंद किया है, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम ही है, इससे हट के कोई और दीन नहीं अपनाना कभी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतु मुस्लिमून, मत तुम मरना इल्ला मगर इस हाल में, वाओ का तर्जुमा यहाँ पे और की जगह ना इस हाल में, अगर आप लिखे इस हाल में के तुम मुस्लिम हो, यानी क्या मतलब, अच्छा एक आपको बात बताऊं, फेले अमर आप समझते ना अभी, कि यानी किसी चीज का हुक्म करना, और एक होता है फेले नहीं, फिल नहीं होता कि यानी किसी चीज से रोकना, जैसे मैं आपको कहूं मत खड़े हो, मत बैठो, नहीं जाओ ना, ये क्या है? फेले नहीं है। यहां पे फेले नहीं आया, ला तमूतुन्ना, ना तुम मरना। मरना तो इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि किस वक्त उसने मरना है किस वक्त नहीं मरना, लेकिन आगे वो कंडीशन बताएगी कि असल बात क्या कही जा रही, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। यानी क्या मतलब हुआ? नंबर वन, दो माने इसके लिखे, नंबर वन इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, ठीक है? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर टू, तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम फरमा बरदार हो अल्लाह के, ठीक है? तो क्योंकि मुस्लिम का माना क्या है? फरमा बरदार, जिसने सबमिट कर दिया हो अल्लाह की विल के आगे, खुद को सबमिट कर दिया हो, खुद को झुका दिया हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना सरे तस्लीम खम कर दिया हो, क्या मतलब है? अपना सर झुका देना, अपने आप को सबमिट कर देना, ठीक है? कि मेरी कोई विल नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, वो ही मर्जी है जो अल्लाह की मर्जी है, तो वो होता है मुस्लिम। मुस्लिम ऐसे नहीं नाम रख लेने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, मैं मुसलमान हूं, मैंने कह दिया तो मुसलमान हो गया। हकीकी मुसलमान कौन है? हकीकी मुसलमान तो वही है जो अल्लाह के आगे झुक जाए, सबमिट कर दे अपनी विल। तो क्या उन्होंने वसीयत की कि तुम मरना नहीं मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो? तो अब सवाल ये है कि हमारी तो मौत हमारे हाथ में थोड़ी है कि पता वो हमें कि किस वक्त हमने मरना है तो हम उस वक्त मुस्लिम हो जाए। इससे क्या पता चलता है? यानी ऐसे अमल में रहो कि तुम्हें मौत आ जाए तो तब भी फरमाबरदारी की मौत हो, यानी अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी करो। ऐसा कोई काम ना करना कि अगर उसमें मौत आ गई तो नाफरमानी की मौत हो, यानी मुस्लिम की मौत आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? इस बात को देखें, उन्होंने ताकीद के साथ वसीयत की, इस बात को उन्होंने इतनी ताकीद से अपने बच्चों से कहा, यानी इससे तो मतलब पता चलता है ना, फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, से पता चलता है कि पूरी जिंदगी फिर फरमाबरदार है ना, क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, वो तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, जैसे हमने बात की, ना पता है कि कल आनी है, ना पता परसों आनी, ना पता आज शाम आ जानी, ना पता 10 साल बाद आनी, ना पता है घर में आनी, ना पता है सफर में आनी है, ना पता है कि बीमारी में आनी है या सेहत की हालत में आ जानी, कुछ भी नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है तो फिर सारा वक्त फरमाबरदारी करेंगे तो फिर आएगी ना। मैंने एक वीडियो शेयर भी की है कि एक बड़े शेख हैं, वो कोई लेक्चर दे रहे हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं कमरे में, बहुत बड़े बड़े उलमा भी बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रहे हैं, उनकी प्यारी बातें बता रहे हैं, तो उतने ही में कहते हैं मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही उनका ना सर पीछे को हो गया और फौत हो गए। देखिए अब वही बात है, जो इंसान जिन कामों में लगा रहता है ना उन्हीं में उसकी मौत आती है, ठीक है? अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे रहेंगे तो मौत भी इंशाल्लाह उसी में आएगी। आप क्यों देखते हैं कोई लोग सज्दे में थे उनको मौत आ गई? हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मौत आए तो मैं बस कुरान पढ़ रही हूं, मौत आए तो मुझे इस हाल में, इंसान सोचता है ना कभी, तो कैसे होगा ये? इस सूरत में नहीं हो सकता कि जब कभी कभार इंसान कोई काम करे, वन सवाइल इंसान कुरान खोल रहा है, रमजानों में सिर्फ खोल रहा है, या नमाज की फिक्र नहीं है और ये सोच है कि सजदे में मौत आ जाए, ऐसे नहीं होता। तो अगर ख्वाहिश है कि मेरी मौत इस हाल में आए, हर एक की अपनी होती है, उम्मीद है कि आप लोग भी इसका सोचते होंगे कि किस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत आए, और होनी चाहिए ये ख्वाहिश, अल्लाह ऐसे ऐसे मेरा दिल करता है कि ऐसे मौत आए, तो फिर वही काम में अपने आप को लगाएं। और जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पे वो नहीं चाहते कि उनकी मौत आए, वो डरते नहीं है कि अगर यहां मौत का तो कोई पता नहीं, अगर यहां पे मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या हो? तो कभी अपने आप को ऐसी जगहों को अवॉइड करें, ऐसी मजलिसों को अवॉइड करें जहां आप नहीं चाहते कि आम मुझे मौत आए, मसलन नहीं शराब की कोई मजलिस से लोग वहां बैठे के शराब पी रहे हैं, क्या आप चाहेंगे यहाँ पे मौत आए मुझे? कोई सिनेमा घर है, क्या चाहेंगे वहां पे मौत आए? हम इस पे नहीं बहस कर रहे कि ये जायज है नहीं जायज, या क्या है क्या नहीं है। मैं कोई मूवीज के खिलाफ नहीं कोई फतवा दे रही, बस सिर्फ आपको हर एक बंदे को अंदर से उसके एक चीज होती है जो आपको बताती है, तो बताएं क्या चाहते हैं वहां पे मौत है? या ऐसे जो नाच गाने हो रहे हैं जहां पे लाउड म्यूजिक हो रहा है, लड़कियां नाच रही हैं वहां पे, अब मुझे मौत आ गई तो क्या चाहते हैं ऐसे? तो फिर क्यों नहीं हमेशा इस चीज की तैयारी के साथ रहते कि मौत तो कहीं पे भी आ सकती, मैं नहीं चाहूंगी मेरी मौत यहाँ है। ऐसी जगहों पे ना जाए, ऐसी मजलिसों में ना बैठे, क्योंकि जैसी इंसान की जिंदगी होगी हदीस में आता है वैसी उसकी मौत होगी, और जैसी उसकी मौत होगी वैसे ही वो उठाया जाएगा। कयामत के दिन देखिए ना, अब वो जो एहराम पहने हुए है तलबिया पुकार रहा है, अब उसको मौत आ जाती है तो अब वो पता कयामत के दिन कैसे उठेगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा, सुभान अल्लाह, इतनी खुशकिस्मती है। तो जो कुछ और करते हुए दुनिया से गए हैं या किसी और जगहों पे थे, ऐसी जगहों पे जहां पे नहीं उनको होना चाहिए था, वहां पे उनको मौत आ गई तो उठेंगे कैसे फिर? वही काम करते हुए उठेंगे फिर। तो ये भी इंसान फिर सोच ले कि वो उस कैसा चाहता है अपने लिए, क्या अंजाम चाहता है और कैसे अल्लाह के सामने हशर में उठना चाहता है। हम सोचे तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए तो जा रहे, आपको नहीं पता वो थोड़ी देर में क्या हो जाए। क्या आप रोज सुनते नहीं है कैसे लोगों की अचानक मौत होती है? कोई नहीं कुछ कह सकता, चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, वो नहीं बता सकता कि मैंने जाने का दिन है या अब जाने का वक्त है या कौन सा है। तो अपने आप को हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी में रखें। अगर आप ख्वाहिश करते हैं कि आप फरमाबरदारी में ही मरें और फरमाबरदारी के साथ ही उठें, तो जरूर अपने एक्शंस को देखा करें, और जब कुछ गलत करने लगे तो तब सोचें आई अल्लाह अगर इसमें मौत आ गई तो क्या होगा, जरूर सोचें। ठीक है, तो उन्होंने कितनी प्यारी वसीयत की कि हमारे बच्चों देखिए तरीका भी है ना कहने का, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी जिंदगी बस तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी, नहीं, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अम कुंतुम शुहदा, क्या थे तुम हाजिर उस वक्त, यानी क्या तुम्हें या और क्या दोनों अम का तर्जुमा, तुम हाजिर थे इद हादरा याकूब अल मौत, जब आ रही थी याकूब अलैहि सलाम को मौत। ये क्यों किसको कहा गया? असल में यहूदी कहते थे कि याकूब अलैहि सलाम ने ही हमें यहूदियत की तालीम दी है, और वो हमें कह के गए थे कि यहूदी ही रहना तुम, और वो भी हमारे ही दीन पे थे। तो उनसे कहा गया तुम्हें पता है, तुम उस वक्त प्रेजेंट थे, तुम उस वक्त मौजूद थे जब उनको मौत आ रही थी, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो क्या अपनी मौत के वक्त कह रहे थे। इद काला ली बनी ही, जब कहा उसने अपने बेटों से, क्या कहा? देखिए अब सोचें कोई डेथ बेड पे है, इमेजिन करें उसके जाने का वक्त है, उस वक्त कितना केओटिक माहौल होता है ना, सब एकदम हड़बड़ा जाते हैं और मतलब किसी को कोई होश नहीं होता। उस वक्त वो अपने बेटों को क्या कह रहे हैं? और आपने कभी किसी को डेथ बेड पे देखा हो और वो अपनी औलाद को बुलाए, तो आप भी कभी सोचिएगा, कहीं आपने किसी को देखा हो तो सोचिएगा कि आजकल क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं आप बताएं को? अक्सर लोग क्या कह रहे होते हैं, जिन्हें हमारा ये बिजनेस है बेटा, बिजनेस तुमने देखना है, जायदादें हैं उसके ऊपर झगड़ना नहीं। बेटों को चलो बहुत माँ बाप को ख्याल होता है तो वो कह देते हैं कि बहनों का ख्याल रखना, फलाने का इस जगह रिश्ता कर देना, फलां ऐसे हो जाना, इस तरह की बातें करते हैं, राइट? बहुत मालदार होते हैं तो माल की ज्यादातर बातें करके जा रहते हैं, वसीयतें कर रहे होते हैं, फलाने को इतना दे देना, फलाने के साथ ऐसे करना, है ना? लेकिन यहाँ पर याकूब अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, वो अपने बेटों को क्या कह रहे हैं? मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटो मुझे बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सुभान अल्लाह, कि ऑन इस हेड क्या चीज है कि क्या चीज है जो उनकी फिक्र बनी हुई है मेरे बाद, मैं यानी मिम बादी जानते हैं क्या है, बादी भी हो सकता था, मा ताबुदुना बादी, क्या बादी से नहीं काम चलता? हाँ वो भी तर्जुमा यही होना था, तुम इबादत करोगे बाद मेरे। मिम का क्यों लफ्ज आया? मिम बादी का मतलब है बहुत बाद मेरे, मेरे बहुत बाद। इसलिए कि जब एक इंसान मरता है तो आपने देखा होगा बहुत जो अल्लाह से दूर भी लोग होते हैं ना, जो कभी नमाजों की तरफ ध्यान नहीं है, कभी अल्लाह के अहकामात को नहीं समझते, वो भी कुरान खोल के बैठ जाते हैं, वो भी सर ढक के तो बस अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं। फिर कुछ दिन जब कोई फौत होता है तो आपने देखा उनके घर का माहौल बिल्कुल ही अक्सर बदल जाता है ना, अल्लाह तौबा बस चल रही होती है, तस्बीहां चल रही होती है। ये असल बात कब होती है? जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर पता चलता है कि आप कितना दीन पे चल रहे हैं। तो फौरन बाद की बात नहीं है, मेरे बहुत बाद तक तुम किसकी इबादत करोगे? ही जस्ट वॉन्ट्स अश्योरिटी, अपने बच्चों से पूछ रहे हैं बताओ मुझे, ये फिक्र है उनकी। और याद रखिए एक बात, कि जो चीज इंसान की सारी जिंदगी फिक्र बनी रही, मौत के वक्त भी तो वही फिक्र होगी। अगर सारी जिंदगी जायदादों की और पैसों की और मेरा बैंक बैलेंस और मेरे जेवर तुमने लेने हैं और फलाने को किसको दूंगी और किसको, और उनके ख्याल रहे और अपने कपड़ों के, तो मरते वक्त भी इंसान यही कहेगा, ओ भाई उस पैसे का ख्याल रखना, देखो बिजनेस का ख्याल रखना, देखो वो मेरे जेवर फलां जगह पे पड़े हुए हैं और फलां भी को भी मैंने दिए हुए हैं, और वो ले लेना उससे और फलानी को दे देना, यही होंगी ना फिक्रें। लेकिन जिसकी फिक्र दीन होगी वो ही अपने बच्चों को कहेगा मरते वक्त, मेरे बच्चों किसकी इबादत करोगे? दिस शोज कि पूरी जिंदगी उनकी कैसी थी, ये सिर्फ मौत के बाद की बात नहीं। मौत के बाद किसको होश इतना होगा कि वो दीन की बात पूछे अगर उसको पूरी जिंदगी नहीं ये ख्याल रहा था। तो ये बात हमें बताती है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया होगा, जब भी मरते वक्त भी पूछ रहे हैं और इस तरह का ट्रेन किया हुआ है कि वो ये सवाल करें मेरे बाद किसकी इबादत करोगे तुम। हम तो होश में भी नहीं कभी अपने बच्चों को पूछते, पूछते हैं क्या बेटा मैं मर जाऊंगी तो किसकी इबादत करोगे, पूछिएगा जरा। और क्या ये कभी कहते हैं फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मरना मरने की तो बात नहीं करते हम भाई अपने बच्चों से, हमारे बच्चों ने कभी नहीं मरना, वो नहीं ऐसी बातें ना करो, मनहूस है ये, हम तो ऐसी बात ही नहीं कर सकते कभी, ये तो हमेशा जिंदा रहने के लिए आए। चलें वो ना सही, आप वैसे अगर कहेंगे अल्लाह के तला के फरमा बरदार रहना, मुस्लिम रहना, मेरे मरने के बाद भी ऐसे रहना, ये अल्लाह के दीन पे चलते रहो। देखें लोग पूछते हैं कब तक बच्चों को नसीहतें करें, कब तक करें, यहां से देख लें कब तक करें, मरते दम तक करनी है। हाँ ये अलग बात है कि आज जब आपके बच्चे छोटे हैं उस वक्त उनको नसीहत करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जब बिल्कुल शादीशुदा हो जाते हैं तो और तरह का डिफरेंट हो जाता है, मगर टॉक टू डेम अबाउट दिस, ये नहीं कि इन बातों को करने से ही शर्माते रहे, हम तो करने से ही शर्माते हैं या ये सोचते हैं इनसे क्या बात करनी, बस सारा कुछ पता तो है इनको, अब मैंने क्या कहना है, ये तो सुनते ही नहीं, ये कह के तो हम बात ही नहीं करते कभी। तो ये पैगंबरों ने तो नहीं ये सोचा, उन्होंने ये सोचा कि सारी जिंदगी तो इनको कहते रहे अब कहने की क्या जरूरत है, अब वो मरने का टाइम आ गया। नहीं, उस वक्त भी वो उनको क्या कह रहे हैं, मीन्स टिल योर लास्ट ब्रेथ आपका ये काम है, और यही सबसे बड़ी खैर ख्वाही है अपनी औलाद के साथ। आप उनकी जितनी दुनिया की फिक्र करते उससे ज्यादा उनकी हमेशा की जिंदगी की फिक्र करें, और कहते रहें कहते रहें, कहने से क्यों थक जाते हैं हम, कुछ पैसा लगता है कहने में, नहीं वो सुनते नहीं, आपको क्या पता सुनते हैं या नहीं सुनते, वो आज नहीं भी सुनेंगे तो मैंने खुद कई लोगों को ये कहते सुना है, उनकी माँ बाप अरसा दराज पहले फौत हो गए तो अब कहते हैं जाके अल्लाह बख्शे मेरे वालिद ये कहा करते थे, उस वक्त नहीं उन्होंने उनकी बात सुनी, वो अब जाके सुन, अब उनको याद आती है अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा ऐसे कहा करती है, तो ये क्या है, इसका मतलब उनको वो बातें याद आती हैं, वो कहीं ना कहीं जहन में होती हैं,
और उनको आप दुनिया से चले भी जाएं, उनको हो सकता है 10, 20, 30 साल बाद कहीं भी आपकी बात याद आए, क्योंकि वो ज़हन में बैठी भी है। और अगर आपने कभी कही ही नहीं, तो कभी नहीं उनको नमाज का कहा, कभी नहीं उनको अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ बुलाया, सुनते नहीं। ये कोई बात है, सुनते नहीं? चलो नहीं सुनते आज, ना सुने, हो सकता है कल सुने, हो सकता है परसों सुने, तो क्यों मायूस हो जाते हैं हम? तो कहते रहे, क्या है ये अंबिया का तरीका है, और ये बहुत जरूरी है हमें इनको बताना कि फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, यानी मरते दम तक तुम इस्लाम पे रहना, ये बात है। ये फला तमूतुन्ना फरमा बरदारी की भी बात है और मुस्लिम रहने की बात है, क्योंकि आज जो वो दौर चल रहा है जिसको कहते हैं दौरे दज्जाल, यानी दज्जाल के आने के लिए स्टेज सेट हो रहा है। और आप अगर दुनिया के हालात से वाकिफ हैं कुछ ना कुछ, तो आप खुद देख रहे होंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। दौरे दज्जाल है ये, यानी दज्जाल आया नहीं है लेकिन उसकी तैयारी सारी हो रही है, सिर्फ दज्जाल के आने का इंतजार है। आप अगर मुस्लिम हैं तो परेशानी है आपके लिए, अगर आप मुस्लिम के अलावा कुछ भी और हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह कभी ना करे, मगर कुछ भी और हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है ना, आप दुनिया में देख लें कि रहना मुसलमान का मुश्किल हो रहा है, कहीं सफर करना मुसलमान के लिए मुश्किल है, कहीं जॉब्स अगर हकीकी मुसलमान है तो उसके लिए मुश्किल है। ये सब मुसलमानों के लिए मसले हैं, औरों के लिए तो नहीं। तो मुसलमान होना ही एक मुश्किल चीज बनता जा रहा है, और ये हमारा दौर है जो हम देख रहे हैं। आगे हमारी औलादों का दौर कैसा होगा? आसानी आ रही है? नहीं, दौरे दज्जाल है ही क्या, और दज्जाल का फितना है ही क्या? वो आपसे पैसे नहीं छीनेगा, वो आपसे आपकी कुछ जायदाद नहीं छीनने आ रहा, आपसे आपका ईमान छीनता है। और अगर ईमान नहीं दोगे तो वो कहता है सब कुछ छीन जाएगा, फिर वो लेगा और चीजें, फिर सब जॉबें भी जाएंगी, घर बार भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, कहता है ईमान दे दो। उसका तो है ही फितना ईमान का, तो सबसे ज्यादा खतरा क्या है? ईमान को खतरा है, और किस चीज को नहीं है। और आप दुनिया में ये देखना शुरू हो गए हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो यहां नहीं रह सकते, अगर तुम मुसलमान हो तो ये है तुम्हारे लिए। मुसलमान होना ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और ये फेस करेंगी हमारी अगली जनरेशंस। तो क्या हमारा काम नहीं है कि हम ये कह के जाएं कि बेटा जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए, देखना ईमान ना छोड़ना। आज वो अगर आपकी बात सुन के ऐसे करके सर झटक के चले भी जाते हैं तो कहीं तो बैठेगी वो बात, ईमान नहीं छोड़ना। मुझसे मिलोगे हशर में तो मुसलमान मिलना, मैं तुम्हें ना देखूंगा, तुम दूसरे ग्रोह में बैठे, ये कह के जाना हमारे लिए जरूरी है। और फिर दुआएं हैं, देखें दुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी जुर्रियत के लिए दुआ की है, दुआएं उसके बाद दुआओं की कोशिश और दुआएं साथ। अब देख लें ये किसको नसीहत कर रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, कुछ याद है आपको इनके बेटे कौन है? इस जिसने सूरह यूसुफ पढ़ी है वो याद कर ले कि ये कौन से बेटे हैं। इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, बिन्यामीन भी हैं, और वो दूसरे भी हैं भाई, ठीक है ना? अब उन दूसरे भाइयों से कितनी बड़ी गलती हुई भी है, कितनी बड़ी गलती हुई भी ना, ये वही भाई हैं, ये वही बेटे हैं जिनसे याकूब अलैहिस्सलाम ये बात कर रहे हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता हाँ हम तो नेक है, हमारे तो बच्चे भी नेक ही होंगे और क्या होंगे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया था, लेकिन उसके बाद बाप की दुआ थी कि फिर वो पलट आए, है ना? पलट आए थे ना, अल्लाह ने पलटा दिया उनको। बाप की एक औलाद के साथ जो उनकी खैर ख्वाही थी दीन के मामले में, आपने देखा कि फिर वो रंग लाई है। तो पैगंबरों का तरीका यही है, गलती हुई थी बच्चों से मगर बाप ने भी माफ कर दिया और उनके लिए इस्तग़फ़ार भी की।
ये वो बच्चे हैं और किसी को गारंटी नहीं है कि वालदैन नेक हैं तो जरूर औलाद भी नेक ही साबित हो जाएगी। उनके लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। और ये भी किसी को नहीं कहने की जरूरत है, लो छोड़ो तुम ये ऐसी फिक्रें करती रहती हो, कोई बात नहीं सही रहेंगे। नहीं, ये फिक्रें तो पैगंबरों ने की हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं ये फिक्रें। कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाहम वाहिदन। बच्चों ने आगे से, बेटों ने क्या जवाब दिया। अब ये कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है, बड़े हैं ना साहिर, जिन्होंने वो सारे काम किए थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुए थे। तो ये उसके बाद ही याकूब अलैहिस्सलाम फौत हो रहे हैं, मिस्र में आके फौत हुए थे वो। तो वो बेटे कहते हैं हम इबादत करेंगे तेरे इलाह की, जिनकी वालिद साहब आपने सारी जिंदगी जिनकी इबादत की है हम भी उसी की इबादत करेंगे। वह इलाह आबाई का, और इलाह की जो आपके आबाऊ अजदाद के इलाह हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपके आबाऊ अजदाद में से, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाह हम वाहिदन। ये दो इलाह नहीं है कि एक इलाह की आप इबादत करते थे और एक इलाह की इब्राहिम इस्माइल और इसहाक, ऐसे ऐसे नहीं कोई समझे ना, कि जैसे इलाह का वह इलाह आबाई का, एक तेरा इलाह और एक उनका इलाह, ऐसा नहीं है। इलाह हम वाहिदा, एक इलाह जो है सारी फैमिली का खुदा एक ही है। ठीक है, तो अब यहां हमें पता चलता है कि इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम को आबा कहा, हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनके ताया हुए ना, लेकिन उनको भी आबा कहा, ताया चचा जो भी ऐसे थे, वैसे तो उनसे बड़े थे। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि चचा या ताया एहतराम में वही मकाम रखते हैं जो बाप रखता है, समझ गए। वो भी बाप के कायम मकाम है, जैसे खाला को कहा गया ना वो माँ की कायम मकाम है, इसी तरह चचा जो है वो बाप की जगह पे होता है, इसीलिए उनको भी आबा में शामिल किया। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके फरमा बरदार हैं, हम मुस्लिम हैं। यानी उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, हम भी फरमा बरदारी करते हैं उसी अल्लाह की जिसकी आप फरमा बरदार थे। और ये नाम मुस्लिम, देखें आप, ये इतना प्यारा नाम है। यहूदियों का नाम उन्होंने अपने बड़े यहूदा के नाम से रख लिया, नसरानियों ने, कहा जाता है कि एक बस्ती थी जिसका नाम नसरान था, वहां से अपना नाम नसरानी रख लिया, लेकिन मुसलमान उसका नाम कितना प्यारा है कि मुसलमान, मुस्लिम का मतलब है जो अल्लाह के आगे सरेंडर कर दे, अपनी विल को उसके आगे सपुर्द कर दे, अपना दिलो दिमाग खुशी गम सब कुछ, सब जज्बात उसके आगे बिछा दे, झुका दे अपने आप को। इसके बावजूद आज ये नाम एक धब्बा बन गया। हाँ, मुस्लिम, मुसलमान अपने आप को फखर से कभी नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं, वो तो दूसरों से मरहूब है, दूसरों से वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए, मैं उनको लगता है कि मैं किसी तरह छुपा ही लूं अपनी आइडेंटिटी के मैं मुसलमान हूं, अपने आप को दिखना नहीं चाहते कि मैं मुसलमान हूं, कोई पहचान ना सके, अपने नाम नहीं मुसलमान वाले रखना चाहते कि किसी को पता ना चल जाए कि मुसलमान है। और यहां पता चल रहा है कि वो फखर से कह रहे हैं नहनु लहू मुस्लिमून, हम सिर्फ उसके लिए फरमा बरदार हैं। हाँ, आज गैर मुस्लिम मुल्कों में मुसलमान ना अपने आप को खौफ की वजह से छुपाते हैं कि पता ना चले कि हम मुस्लिम हैं, और जो मुसलमान मुल्क हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आप जाके किसी से पूछ लें आप क्या हैं, कोई नहीं कहेगा मैं मुसलमान हूँ, कोई कहेगा मैं हनफी हूँ, कोई कहेगा मैं शाफी हूँ, कोई कहेगा मैं अहले हदीस हूँ, कोई कहेगा मैं ये हूँ वो हूँ, कोई मुस्लिम नहीं अपने आप को कहता, जबकि कुरान की तालीमात के मुताबिक मुस्लिम तो बहुत बहुत आला एक नाम है। ये सब सेक्ट्स में जो हम बट गए हैं आज, फिरकों फिरकों में अपने आप को बांट लिया, और उससे फखर महसूस करते हैं कि हमारा ये नाम है, हम ये हैं। अगर आप कह देंगे ना मैं मुसलमान हूँ, नहीं मुसलमान है, लेकिन फिर बताए ना कौन है, नहीं आपके लिए ये काफी नहीं है कि कोई मुसलमान है, नहीं नहीं मुसलमान तो हम सारे हैं, आप बताएं आप हैं क्या।
आप वो आगे बात भी आएगी कि आप बताएं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अबू बकर सिद्दीक और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा क्या थे और बाकी सहाबा क्या थे। हम अपनी पहचान उन नामों से कराना चाहते हैं जो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो थे भी नहीं, और वो नाम जो इतने पहले से पैगंबर और उनकी औलादें बोल रही हैं, और पैगंबर कह रहे हैं कि अल्लाह हमें मुस्लिम बनाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह रहे हैं, वो नाम नहीं हमें पसंद। और दूसरी बात ये कि आज तो सिर्फ नाम के मुसलमान होने को बस समझा जाता है मुस्लिम। अगर कोई वाकई मुस्लिम बनता है ना, जिसका मतलब है फर्मा बरदार, तो परेशानी शुरू हो जाती सबको, इवन घर वालों को परेशानी शुरू हो जाती है कि ये क्या बन गई हो तो। हाँ वो कहते हैं तुम नॉर्मल रहो ना जैसे हम मुस्लिम हैं, ये कौन सी मुस्लिम तुम बन गई हो जो कि मतलब तुम्हें क्या दिखाने की जरूरत है, बस जो होता है वो दिल में होता है ना, दिल से तो हम भी मुसलमान हैं। आगे आप देख लेंगे, अभी इन सारी बातों के जवाब आएंगे जब सिबगत अल्लाह आता है, अल्लाह का रंग किधर फिर चढ़ता है। तो बस इतना हद तक मुस्लिम रहो जैसे हम हैं, इससे ज्यादा मुस्लिम हो रही हो तुम कि आप दिखनी भी मुस्लिम लगी हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता अक्सर घरानों में। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, वो उम्मत थी, तिलका उम्मत नहीं, ये उम्मत है कौन सी, ये वाली याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये सब एक उम्मत थे, एक जमात थे। कद खलत गुजर चुकी है वो, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो उनके लिए जो उन्होंने कमाई की और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाई की, यानी अब इस बात के ऊपर बैठ के बस बोलते रहना कि देखिए हमारे आबाओ अजदाद तो कितने अजीम थे, देखिए हम तो फलां के मानने वाले हैं, अब जैसे हम कहें सहाबा कराम की, हम उनकी बातें पढ़ें और उसके ऊपर फख्र कर रहे हैं और कभी आंसू बहा रहे हैं उनके किस्से सुन सुन के, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के हम बहुत खुश हो रहे हैं और बड़ा हमें मजा आ रहा है, उसके बाद क्या है। बात तो यह है ना कि उसके बाद अपने अमल में हम उसको लेकर आए, क्योंकि उनकी ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है अगर हम वैसा नहीं चलते। लहामा का सबत वाला कुम्मा का सब तुम, अल्लाह तला ने साफ वाजे कर दे, जो उन्होंने कमाई की वो उनके लिए, उसका तो अजर तुम्हें थोड़ी मिल जाना है। हाँ वो उन्होंने जो कुर्बानियां दी, वाह वाह भाई क्या बात है, बस हम इतने करने के काबिल ही अब रह गए कि हम ये स्टोरी टाइम कर लें, बैठ जाएं, किस्सों को दोहरा लें, उसके बाद बस चार आंसू बहा के दामन झाड़ के तो वो जा रहे हैं, तो हमें क्या ये चीज देगी अगर हमने उनका रास्ता नहीं अपनाया तो। और ये देख लेना, ये ऐसे ही है, समझ लें, ऐसे समझ लें इसको कि एक ट्रेन है, ठीक है, अब ट्रेन का जो पहला डब्बा है ना, समझ लें ऐसे इमेजिन नहीं करें, उसको आपको मिसाल एक बता रही हूं ताकि आपको बात समझ आए, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम है, और फिर आपने देखी कई ट्रेनें मीलों लंबी होती हैं तो चलती जाती हैं, यानी उनके डब्बे खत्म ही नहीं होते, आप कहते हैं कब खत्म होगी, अब वो कहीं पीछे 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 के बहुत एंड के डब्बे में हम हैं। हमारी कामयाबी तभी है चाहे हम जितने भी पीछे हैं लेकिन हम उसी पटड़ी पे चल रहे हैं, वो बहुत आगे हैं हमसे, बहुत आगे हैं, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो वो एक ही ट्रैक पे चल रही होती है ना, वो आगे हैं हम उसी ट्रैक पे पीछे हैं, तो हम जितने भी पीछे होंगे लेकिन मंजिल हमारी फिर सेम ही है, लेकिन अगर हम ट्रैक से हट गए, हमें तो वो नजर नहीं आ रहे, वो तो बहुत आगे हैं, हमें तो वो डब्बा भी नजर नहीं आ रहा, बहुत आगे हैं, तो अब हम कहीं और चले जाते हैं, नहीं तब कामयाबी नहीं है। कामयाबी है कि इसी पटड़ी पे हमने भी रहना है, हमने चलना यही है, वो चाहे कितने पहले गुजर चुके इस रास्ते से, हम अब इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमने भी वही करना है जैसे उन्होंने किया, तब है कामयाबी। और अगर रास्ते बदल लोगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी।
वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुम नहीं सवाल किए जाओगे इसके बारे में जो वो अमल करते थे, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। यहाँ कुछ लोग बहसें लेके बैठ जाते हैं, हाँ जी वो सहाबा कराम के दरमियान क्यों ऐसी जंग हुई थी, क्यों ऐसा हुआ था, उनके ऐब टटोलने लगते हैं। नहीं, तुमसे नहीं पूछा जाएगा, आप अपना काम करें, यानी ये आपको बताया जा रहा है, अपनी फिक्र करें। वो जमातें गुजर चुकी, हाँ उनको रोल मॉडल बनाएंगे, उनको देख के वैसा अमल करेंगे, लेकिन ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से क्या फरमाया था, फातिमा मुझे दुनिया में ले लो जो लेना है, लेकिन मैं आखिरत में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ए मेरी फूफी सफिया, मैं जो मुझसे कहती हो दुनिया के अंदर मांगती हो ले लो, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा। जब उन्होंने अपनी बेटी, लाडली बेटी और फूफी से ये फरमा दिया, तो फिर और लोग कैसे सोचते हैं कि बस हमने तो करें हम कुछ भी ना, उस वहां पे जाके तो हमने पार हो जाना, उन्होंने हम जो उन्होंने तो जन्नत में ही नहीं जाना जब तक हमें ना पार करा दें। लहा माँ कसबत वलकुम माँ कसब तुम, माँ कसब ना, माँ कसब हुम नहीं है, जो उन्होंने किया वो तुम्हारे काम आएगा। वकालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, उन्होंने कहा किन्होंने, ये अहले किताब ने, कूनू हूदन यहूदी कहते थे, यहूदी हो जाओ, औ नसारा या नसरानी कहते थे, नसरानी हो जाओ, तहतदू तुम हिदायत पा जाओ, अगर तुम ये बनोगे तो हिदायत पा जाओ, यानी कोई तौहीद की तरफ पैगाम नहीं था, बस हमारे फिरके में हमारे मजहब में आ जाओगे ना तब तुम ठीक रहोगे, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे आज हम कहते हैं लोगों को इस्लाम की दावत तो नहीं देते, अपने फिरकों की दावत देते, लोगों तौहीद की तरफ नहीं बुलाते, ये बस आप हमारे फिरके में होंगे तभी आप ठीक हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो उनके भी यही पे मसले थे ना, उन्होंने जो तो हिदायत की शर्त ही रख दी कि जो है बस ये टाइटल्स होंगे तुम्हारे तो तुम सही हो, हालांकि आपको पता है एक मुसलमान भी एक टाइटल नहीं है, कि ये टाइटल मिल गया ना आपको तो बस आप निजात पा जाएंगे, किसने आपसे कहा। अब ये सोचते ना कि बस मुसलमान है ये टाइटल, ये एक एक नाम मुझे मिल गया तो अब बस मेरी निजात है, ये तो कहीं पे भी नहीं है। जहन्नुम में जो कई गुनाहों के ऊपर बताया गया कि ये गुनाह करेगा तो जहन्नुम में होगा, वो कई गुनाह जो मुसलमान करते हैं क्या वो ये जगह नहीं है उनकी, वहां पे दर्जे हैं, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मुशरिक है, काफिर है, मुसलमानों का भी एक दर्जा है जहन्नुम, जो मुसलमान गुनाह कबीरा और जो भी अल्लाह की नाफरमानी करके, जो अल्लाह को पता किसको किस में भेजना, किसके लिए माफी नहीं है, तो वो वहां पे पड़े होंगे, किसने कहा कि मुसलमान डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे बस। तो वो कहते थे कि बस ये यहूदी हो जाओ नसारा हो जाओ बस तुम्हारे लिए फरागत है, बस आज भी वो कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो जाएं तो ईसा अलैहि सलाम ने आपके सारे गुनाह अपने सर ले लिए, आप बस निजात हो गई, आपको तो कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं। इंसान इनसे फिर पूछे जाके कि आप अपने चर्चेज में ये जो इतने वो कर रहे होते हैं कि ये ना करो वो ना करो, गुनाहों से रोक रहे होते हैं, तो फिर रोकने की क्या जरूरत है, करने देना जो भी करते हैं, ऑलरेडी ईसा अलैहि सलाम तो ले ही चुके हैं सारे गुनाह अपने साथ, फिर मना क्यों करते हो आप लोगों को। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कह दीजिए नहीं बल्कि कौन है हिदायत पर, तुम कहते हो यहूदी हो जाओ या नसारा हो जाओ, नहीं बल्कि हिदायत पे कौन है, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हिदायत का रास्ता कौन कौन सा है, तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो हनीफ थे यकसू थे। सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, वो यहूदी थे, वो कहते थे वो यहूदी थे, यहूदी कहते यहूदी थे, ईसाई कहते ईसाई थे, हालांकि कुरान पाक में आप सूरह आले इमरान में पढ़ लेंगे कि तुम ये नहीं सोचते कि यहूदियत और ईसाई तो बहुत बाद की बातें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले फौत हो चुके थे। आप देखें ना ये याकूब अलैहिस्सलाम की, ये बेटों की आगे नस्लों के अंदर आप देखें, इसहाक अलैहिस्सलाम यानी सॉरी या इसहाक अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल में याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटों के अंदर ये बनी इसराइल हैं जो यहूदी हैं, तो कहां वो यहूदी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साथ ही लपेट लिया कि वो भी यहूदी थे, इन्हीं में भी राके ईसाइयत आई, वो कहते हैं वो ईसाई थे, ईसाइयत तो बहुत बाद में आई यहूदियत के भी बाद में,
तुम कैसे कह सकते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये थे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज कहते हैं ना, नहीं तुम ये बनो तो फिर है। हम उनको कहते हैं भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये नाम ही था। नहीं, आप जब तक ये नहीं होंगे ना हमारे फिरके में नहीं होंगे तब तक नहीं सही। पर देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम थे, वो सिर्फ ये अकीदा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इनको पकड़े रखोगे ना तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान और सुन्नत बस। तीसरी चीज तो बात की बातें हैं ना। हमने क्या, ठीक है किसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, एक की एक राय हो सकती है दूसरे की दूसरी हो सकती है, सहाबा में भी हो जाता था कि इनकी ये राय है दूसरे की कोई और, अब आपने तफसीरों में देख लें उसकी बेसिस पे, लेकिन ऐसे फिरके बना लेना कि बस हम तो अपने फिरके पे जान दे देंगे और उसी की प्रमोशन करना, और कोई और किसी और फिरके से है तो उसको क्या कह देना कि बस ये, मतलब अहले सुन्नत वाल जमात में ही इतने फिरके हैं कैसे आप सारे कहते हैं हम सुन्नत के मुताबिक चलने वाले हैं फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? और हर एक का दावा यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, वो हनफी थे, शाफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे, क्या थे, देवबंद थे, बरेलवी थे, क्या थे, वो सब कहेंगे वो यही थे जो हम। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? यकसू। अल्लाह ताला को ये चाहिए तुमसे, फिरके नहीं चाहिए, फिरकों को प्रमोट करना और फिरकों के पीछे। हनीफ, हनीफ यानी यकसू, सबसे कट के सिर्फ एक का हो जाना, यही बात तो हमें भूल जाती है। नहीं, उनके लिए क्या थी कि फोकस थे वो, उन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया था अल्लाह के लिए, ये बात याद नहीं है, मगर फिरकों के नाम और फिरकों की प्रमोशन याद है। और हमें अल्लाह ताला ने कितना प्यारा तरीका बताया है हनीफ होने का, और वो क्या है कि 5 दफा अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ सब चीजों से कट के, यकसुई इख्तियार करो, दिन में 5 दफा यकसुई सिखाई है। हम सबसे मुंह मोड़ लेते ना, खाने से, पीने से और अपने और कामों से, हर किस्म की बातचीत से, सबसे मुंह मोड़ के हम एक अल्लाह के आगे जा नमाज पे खड़े होकर उससे बस बातें करते। तो यही यकसुई अल्लाह को सारी जिंदगी में चाहिए हमसे, हम सारी जिंदगी में ये इख्तियार करें, अपने सारे फैसले अल्लाह से लें, अपनी सारी मर्जियां अल्लाह के आगे झुका दें। यकसुई खत्म हो जाती है जब अपने फैसले आपने किसी और से लेने होते, दूसरों से पूछना होता तुम बताओ मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, किसी ने पूछा तुम बताओ मैं हिजाब लूं कि नहीं लूं, भाई कैसे कोई किसी अपने अल्लाह ने जो फैसला दे दिया उससे किसी और से पूछेंगे कि ये करूं कि नहीं करूं, जब कि अल्लाह ताला ने फैसला दे दिया। तो अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के मुकाबले में ले आना, ये तो यकसुई नहीं है, या उसे ऊपर ही कर देना, ये तो यकसुई नहीं है। जब इंसान कहता है ना समझ ही नहीं आती किसकी मानू किसकी ना मानू, तो कहां है यकसुई फिर, कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, बस ये तो सिंपल बात है अल्लाह की माननी है मुझे, बस ये तो यकसुई है। तो सारी जिंदगी में हम तो देख रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ये इतना प्यारा टाइटल अल्लाह ताला ने दिया है ना कुराने पाक में, कि वो हर जगह कुराने पाक में बताया गया कि वो हनीफ थे। ये कितनी प्यारी क्वालिटी होगी जो अल्लाह को पसंद होगी कि अल्लाह ने अपने खलील को ये क्वालिटी दी, उनके लिए ये वर्ड यूज किया कि वो हनीफ थे। हनफी रखने से अपना नाम हनीफ नहीं हो जाते आप, हनीफ बनने के लिए ये पता होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी सबकी मर्जियों के ऊपर, अल्लाह का हुक्म सबके हुक्मों के ऊपर, अल्लाह की बात के आगे किसी की बात नहीं चल सकती, एक अल्लाह की मान के आप यकसू होते हैं। और आप देख लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी है, अगर आपने देखना ना हनीफ कैसा होता है तो देख लें उनकी जिंदगी, आपको पता चल जाए कहां पे वो झुके, कि कहीं वो अपनी बीवी की मोहब्बत में झुक गए हो, औलाद की मोहब्बत में उन्होंने गिव अप कर दिया हो, वतन की मोहब्बत के अंदर वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हो, बाप की मोहब्बत के आगे वो अपने आप को कह रहे हो कि अब मैं क्या करूं लाचार हो गए हो, या किसी लोगों की मुखालफत के आगे अपने आप को झुका दिया हो, बादशाह वक्त जो था जो नमरूद था उसके आगे बेबसी महसूस की हो, अब क्या करूं, मुखालफत इतनी हो गई। नहीं, आप जगह जगह तो देखें, हनीफ है वो, कुछ पिक्चर बनती है जहन में, पढ़ लेना तो आसान है, ठीक है, मैं भी ऐसे गुजर सकती हूँ, लेकिन कुछ जहन में पिक्चर बनती, उनकी जिंदगी को जहन में लिया, पता चल जाएगा हनीफ कैसा होता। किसी चीज ने उनको नहीं झुकाया, झुकने वाले थे तो सिर्फ अल्लाह के आगे, किसी चीज ने उनको बेबस नहीं कर दिया। ये क्या करूं भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, वैसे बड़ा ही मुश्किल है। नहीं, आपको नहीं पता कितना मुश्किल है जब बच्चों की मोहब्बत होती है, आपको नहीं पता कितना मुश्किल है जब इतनी मुखालफत होती है। आखिर हमने रहना तो यही है ना, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैंने तो इसी मुल्क में रहना है, ये मेरा वतन है, सब छिन जाएगा, कौम कुंबा बरादरी सब चीजें तो छोड़ दी थी, अकेले ही तो निकल पड़े थे, एक बीवी थी साथ, एक भतीजा था बस, बिल्कुल यानी होमलेस, बिल्कुल कोई सामान पास नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या रह गया था, जॉब थी उनके पास, घर था उनके पास, हाँ क्या था, कुछ भी नहीं था। ये हनीफ होने की जरूरत है, तब जाके हम आगे आने वाले वक्तों में अपने ईमान को संभाल सकते हैं, और अगर गिरते ही रहना हर जगह, हाँ उसने ये कह दिया, अब क्या कर सकते हैं, चलो उसकी भी मान लेते हैं, अल्लाह को तो मना लेंगे बाद में, तोबा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा वो ये कह रहा है, हाँ अब उसका दिल कैसे तोड़े, वहां पे भी जाके गिव अप कर दिया। अच्छा उसकी ये ख्वाहिश है, क्या करें फिर, अगर उसकी ख्वाहिश ना पूरी करें तो फिर वो नाराज हो जाए, तो वहां पे भी जाके सरेंडर कर दिया। तो आप तो हर जगह ही माथे टेकते फिर रहे हैं, आपने क्या फिर हनीफ होना है, हाँ जो हर जगह माथा टेक देगा, जो हर जगह झुक जाएगा, कहीं कुछ ये चीज अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर ही नहीं आएगा कि नहीं मैंने झुकना कहीं नहीं है, झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे, तो वो हनीफ बन सकता है ना फिर, तो जिन्होंने कभी लोगों के आगे झुकना हो, कभी माशरे के आगे, कभी रस्मों रिवाज के आगे, कभी रिश्तेदारों के आगे, कभी खामिद के आगे, कभी बच्चों की जिद के आगे, कभी किसी के आगे, तो कभी किसी के आगे। देखिए आप किसी को नहीं बदल सकते, मगर अपने अंदर तो स्ट्रेंथ ला सकते हैं ना, अपने ऊपर तो, अपने आप को तो चला सकते हैं ना, ठीक है माना नहीं चला सकते, ना शौहर को चला सकते, ना बच्चों को चला सकते, ना माशरे को चला सकते, अपने आप को तो चला सकते हैं, लेकिन वहां भी हमारा पता चलता है कि हम किधर किधर जाके अपने माथे टेकते हैं, और किधर किधर हम झुक जाते हैं, और किधर किधर हम बेबसी के बहाने करके और फिर वहां पे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, जो सारा पढ़ा लिखा सब छोड़ दिया, अब क्या करें ना, मजबूरी है, वो फिर हनीफ नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं बड़े लोगों की, लेजेंड्स की, हाँ जी, ये आम लोग नहीं है, इसलिए मैंने इस क्लास से पहले दुआ की, अल्लाह ताला हमें इनके रास्ते पर चला देना, अल्लाह ऐसा बना देना हमें, ये हमारे रोल मॉडल्स, इनको अल्लाह ने फिर इमामत दी है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक भी नहीं थे, यानी तीनों तीनों को रद्द कर दिया गया, यहूदी नसारा मुशरिकीन, मुशरिक भी तो कहते थे ना, या हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं, मुशरिकीन मक्का यही तो कहते थे, हम तो उनके वो हैं, हम उनकी औलाद में से चले आ रहे हैं, हम तो उनकी पैरवी करने वाले हैं, तो वो तो मुशरिक भी नहीं थे, ना वो यहूद थे ना नसारा थे।